मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं कल वाले ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले दो समाचार हैं जिनके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा, जिनमें से एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह है एक नए मंत्रालय का गठन किया जाना। अभी जब मंत्रिपरिषद में हेर फेर किया गया है तो उसी दौरान केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, कोऑपरेटिव सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय चूंकि नया मंत्रालय है तो आपकी जानकारी में होना चाहिए और आपको शायद ये मालूम ही होगा कि खासकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत से ही भारत के विकास का जो सपना देखा था वो कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए देखा था, सहकारिता आंदोलन के जरिए उन्होंने ये देखा था और इसकी प्रेरणा उन्हें रशिया से मिली थी, कोऑपरेटिव मूवमेंट। और आप देखिए कि हमारे यहाँ जो अमूल जैसा दुग्ध संस्थान है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट से पैदा हुआ संस्थान है, बना हुआ संस्थान है, सहकारिता आंदोलन। तो दोस्तों, अभी तक जो ये सहकारिता विभाग कह लीजिए या इसके लिए कामकाज देखने की जो जिम्मेदारी थी वो कृषि मंत्रालय के पास थी। देखिए, जो देखा गया था विकास की बात सहकारिता मंत्रालय के द्वारा, देखिए जो सहकारिता की बात शुरुआत में की गई थी आप पाएंगे कि उसमें कृषि क्षेत्र प्रमुख था, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो दुग्ध हो, यानी कि कृषि का जो क्षेत्र है वहीं वह ज़्यादा महत्व रखता था। ये बात अलग है कि बाद में उसमें कुछ और चीज़ें जुड़ गई जिसमें कि कर्मचारी कल्याण भी आ गए, आवास भी आ गए, ये बाद में आए हैं, लेकिन शुरुआत में ये कृषि के क्षेत्र में लागू किया गया था तो कृषि मंत्रालय को दे दिया गया। लेकिन कृषि मंत्रालय अपने आप में इतना बड़ा मंत्रालय है, उसके पास दूसरे इतने ज़्यादा काम होते थे कि वो सहकारिता वाले विषयों को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं देख पाता था। जैसे अभी तो हालत ये हो गई थी, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई सहकारी संगठन बनाया और वो चाह रहा है कि वो संगठन कई राज्यों में काम करे, है ना, तो कई राज्यों में काम करने के लिए फिर उसे बकायदे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, केंद्र सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो कृषि मंत्रालय को भेजेगा कि आप इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो अभी ये देखा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन में 2-2 साल लग जाते थे। तो दोस्तों, इन सारी स्थितियों को देखते हुए अब अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। आप देखिए कि सहकारिता, सामान्य तौर पर हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती है लेकिन हमारे पास आंकड़े हैं कि भारत में इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, 8 लाख रजिस्टर्ड सहकारी समितियां हमारे यहाँ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी 8 लाख, और इसमें लगभग 40 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, 40 करोड़ लोग, आप कल्पना करके देखिए। और इनमें से सोचिए 8 लाख में से सिर्फ 1500 सहकारी समितियां ऐसी हैं जो बहुराज्यीय हैं। बहुराज्यीय कहने का मतलब है कि कई राज्यों में वो काम कर रही हैं। तो सवाल ये है कि ज्यादा सहकारी समितियां बहुराज्यों में काम क्यों नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए व्यावहारिक दिक्कतें थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब सहकारिता मंत्रालय बन जाने के बाद शायद क्या मतलब, इसी अपेक्षा के साथ ही इस मंत्रालय का गठन किया गया है कि अब जो सहकारी समितियां ऑलरेडी काम कर रही हैं ज़्यादा पारदर्शिता तरीके से काम कर सकेंगी, ज़्यादा एक्टिव हो सकेंगी और बहुराज्यीय स्तर तक अपने गतिविधियों को फैला सकेंगी। तो ये उठाया गया जो कदम है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आगे अगर कोई भी खबर आती है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये जो सहकारिता आंदोलन है, देखिए सहकारिता आंदोलन एक तो असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनको संगठित करता है और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ संगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है। दूसरा ये कि जो छोटे छोटे साधनों वाले लोग हैं जो अपने स्तर पर कुछ नहीं कर पाएंगे, जब वो सहकारिता से जुड़ जाते हैं तो उनकी बहुत ताकत बढ़ जाती है। और मतलब एक स्टडी में ये पाया गया है कि अगर जो हमारे उत्पादक हैं, चाहे वो दूध का उत्पादन कर रहे हों, मछली का उत्पादन कर रहे हों, अगर वो बाकायदे सहकारिता से जुड़ जाते हैं या यूं कह लीजिए कि वो समूह में काम करने लगते हैं तो सालाना 7-8 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। सोच करके देखिए कितनी बड़ी बचत है। तो दोस्तों, ये जो मैंने कुछ आपको महत्वपूर्ण आंकड़े बताए हैं बेहतर होगा कि आप इन्हें नोट कर लें। दूसरी जो छोटी सी खबर है दोस्तों, अभी खासकर जब मंत्रिपरिषद में फेरबदल किया गया है तो उसी में एक और परिवर्तन किया गया है। एक था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, एक विभाग था पब्लिक इंटरप्राइजेस, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे उपक्रम थे, है ना, सरकारी फैक्ट्रियां कह लीजिए, सरकारी जो तंत्र, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सरकारी तंत्र है, सार्वजनिक तंत्र है, तो डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करता था। अब इसे शिफ्ट कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डाल दिया गया है, यानी कि अब इसके जो पेरेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जो किया गया है उसके पीछे दो मुख्य कारण है। पहला तो ये है कि आप देखते हैं कि जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं वो लगातार आलोचना के केंद्र में रहते हैं, घाटे में चलते रहते हैं, तो सरकार अब इनके निजीकरण के बारे में सोच रही, बहुत से निजीकरण कर भी दिए गए हैं, तो इनको प्राइवेटाइज किया जाए। दूसरा यह है कि अगर हम प्राइवेटाइज नहीं करने की सोच रहे हैं तो डिसइन्वेस्ट किया जाए, विनिवेश किया जाए। तो अभी जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि इन दोनों उद्देश्यों को की पूर्ति के लिए ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज है इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में शिफ्ट कर दिया गया है। यह तथ्य भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। दोस्तों अब मैं आता हूँ मुख्य विषय पर, और वो है कि मंत्रिपरिषद में क्या आपको लोकतंत्र दिखाई देता है। इसके बारे में मैंने कल आप सब को विचार करने के लिए कहा था और मेरे पास कुछ मेल भी मिले हैं जिसमें काफ़ी, मैं ये कहूँगा कि संतोषजनक उत्तर कुछ के रहे हैं। यहाँ मैं खासकर आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। दोस्तों हम लोगों के दिमाग की जो सोचने की प्रणाली होती है वह एक तरफा हो जाती है, और वह एक तरफा इसलिए होती है कि हम न्यूज़ में एक तरफा चीज़ें सुनते हैं, अखबारों में एक तरफा चीज़ें पढ़ते हैं, तो हमारी अपनी जो तर्क शक्ति है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, और यूं कह लीजिए कि हमारी तटस्थता भी बाधित हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब अभी मंत्रिपरिषद में फेरबदल किया गया है तो अब आप देखिए कि आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, और ऐसा लगता है उनको सुनने के बाद कि जैसे सरकार कुछ ठीक नहीं कर रही है। जैसे आपको पढ़ने को मिलेगा, अरे यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं राज्यों के, तो उसको देखते हुए सर फेरबदल किया गया है और यूपी से ज़्यादा मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो आपको लगता है यार ये तो राजनीति हो रही है। फिर आप सुनते हैं कि शेड्यूल कास्ट से ज़्यादा मिनिस्टर लिए गए हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो आपको लगता है कि ये जाति के आधार पर राजनीति हो रही है। यही दिमाग में आता है ना, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका यही हो गया है। हम ये नहीं समझ पाते कि इनफैक्ट यही लोकतंत्र है। देखिए लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र यही है ना। अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, या आप कह लीजिए कि उन्हें सत्ता में हम बराबर की हिस्सेदारी देना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या उपाय है कि ठीक है आइए सत्ता में भागीदारी निभाइए और डेवलप कीजिए। तो ये जो दबाव बना ऐसे लोगों को सरकार में लेने का जो एक तरीके से अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, फिर चाहे यह उपेक्षा क्षेत्र के स्तर पर हो, चाहे यह उपेक्षा जाति के स्तर पर हो, चाहे यह उपेक्षा आर्थिक स्तर पर हो, धार्मिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, और यदि सरकार उन्हें लेने के लिए बाध्य हो रही है, या कह लीजिए कि प्रधानमंत्री उन्हें लेने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो ये कौन है जो बाध्य कर रहा है? आपको इस पर विचार करना चाहिए, और यह इंटरेस्टिंग फैक्टर है लोकतंत्र का, यही तो फैक्टर है कि आप अपने मन से सारी चीजें नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, आपका मन नहीं चलेगा तो फिर किसका मन चलेगा? पब्लिक का मन चलेगा। पब्लिक का मन कैसे चलेगा कि ठीक है आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मंत्रिपरिषद में मत लीजिए, उनको ठीक से प्रतिनिधित्व मत दीजिए, तो जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो मतदाता है वो इस पर विचार करेगा ना कि ठीक हमारी उपेक्षा हो रही है ना, तो ठीक हम नेतृत्व बदलते हैं। तो इसलिए दोस्तों जब भी कोई भी सरकार मतदाताओं को ध्यान में रखकर, या कह लीजिए मतदान को ध्यान में रखकर, और अगर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहे तो चुनाव को ध्यान में रख करके कोई निर्णय लेती है, यानी कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे मतदाता छिटक जाएंगे, और अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमें वोट मिलेंगे, तो यही लोकतंत्र है। हाँ ये बात अलग है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए वो जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितने संवैधानिक हैं, कितने वैधानिक हैं, ये बिल्कुल एक विचारणीय मुद्दा है कि आप जाति के आधार पर उन्हें नहीं लुभा सकते, नहीं लुभाना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन राजनीति में तो ये सब किया जाता है। तो दोस्तों जब भी हम मंत्रिपरिषद के बारे में सोचते हैं या अभी के बारे में जब आपने सोचा होगा तो आप देखें कि अखबार क्या क्या लिख रहे हैं। ये लिखते हैं ना कि गुजरात से इतने ले लिए, फलाने से इतने ले लिए, इस क्षेत्र से अभी कोई नहीं थे तो वहां से इतने ले लिए, वहां से चुनाव होना था तो वहां से उन्होंने इतना इनका प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया, फलाने का कर दिया। तो यही सही मायने में लोकतंत्र है और इसे आपको थोड़े से तटस्थता के साथ देखना होगा, अदरवाइज हमारा दिमाग बिल्कुल फालतू की बातों में चला जाता है कि भैया ये तो राजनीति हो रही है। इनफैक्ट जो राजनीति शब्द है यही अपने आप में कुछ निगेटिव अर्थ लिए हुए हो गया है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि कम से कम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं वो इसके प्रति तटस्थता का भाव बरते हैं। जो राजनीति है वो एक विषय है, जो राजनीति है वह एक प्रणाली है, भले ही हम उसका इस्तेमाल नकारात्मक रूप में करते हों, व्यंगात्मक रूप में करते हों, वो इस्तेमाल करना एक अलग बात है, लेकिन एज एन स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो राजनीति शब्द का प्रयोग आपको विषय के रूप में किया करना है। और याद रखिए कि जब आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो इसी राजनीति के हिस्से बनने जा रहे हैं। तो बेसिकली जब हम लोकतंत्र की राजनीति की बात करते हैं तो वो होता क्या है, इसकी सामान्य सी परिभाषा यही है कि जो हमारा समाज है, समाज में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनके अलग अलग हित हैं, उनके अलग अलग डिमांड्स हैं, और ये जो उनके हित और डिमांड्स हैं एक दूसरे के विरोध में भी हो सकते हैं। तो जो लोकतंत्र है वो कुल मिलाकर के ये जो परस्पर विरोधी जो शक्तियां हैं, जो वर्ग हैं, जो समूह हैं, इनके बीच में संतुलन बनाने की कला है, संतुलन बनाने की राजनीति ही लोकतंत्र है। तो दोस्तों जो लोकतंत्र है उसकी इस तरह की परिभाषा पर भी आप लोग विचार करने की कोशिश कीजिएगा। दो दिन का वक्त आप लोगों के पास अभी इसके लिए है। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से दो साथियों के नाम हैं, सुशीला पाटन नागौर राजस्थान से और बिन्नी कुमारी सारण बिहार से, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।